पिछले वर्ष की तुलना में ऑस्ट्रेलिया में आने वालों की संख्या में 73% की वृद्धि हुई है और आवास संकट दिन ब दिन और भी बदतर होता जा रहा है। इसलिए ऐसा लग सकता है कि प्रवास यानी माइग्रेशन के कारण आवास की कीमतें बढ़ रही हैं।
We're ending migration system settings that drove temporary visa holders to stay long term, and we're introducing limits on international student numbers. We're taking action.
But by getting the migration policy settings right, the coalition can free up more houses for Australians.
लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है।
When commentators and politicians attribute all problems in the housing market to high immigration, by definition, they're diverting attention away from the wide range of policy approaches that are required to deal with the housing crisis.
Peter McDonald, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी के सेवामुक्त प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि प्रवासियों का घर खरीदने और किराए के घर का बाजार दोनों पर ही बहुत कम प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर मैकडोनल्ड के अनुसार पिछले साल आने वाले अधिकतर लोग अस्थायी प्रवासी थे जो आमतौर पर घर नहीं खरीदते हैं। उनका कहना है कि घर खरीदने के बाजार पर उनका लगभग शून्य प्रभाव पड़ता है। इसके और भी प्रमाण हैं। पिछले साल एडिलेड, ब्रिस्बेन और पर्थ में संपत्ति के मूल्यों में उछाल आया, जबकि सिडनी और मेलबर्न में ये उछाल काफ़ी कम था। और वहीं सिडनी और मेलबर्न में नए प्रवासी बड़ी संख्या में आए।
There's further evidence of that. In the last year, property values surged in Adelaide, Brisbane and Perth, while the rises in Sydney and Melbourne were quite low. Yet Sydney and Melbourne received the lion's share of the new arrivals in the migration stream.
जहाँ तक किराए के बाजार का सवाल है, प्रोफेसर मैकडोनल्ड का कहना है कि अस्थायी प्रवासियों का प्रभाव उतना बड़ा नहीं है जितना कई टिप्पणीकार बता रहे हैं। 2022-23 में आने वाले अस्थायी प्रवासियों में अधिकतर छात्र और छुट्टी मनाने वाले लोग थे। छात्र स्टूडेंट एकोमोडेशन में और दूसरे छुट्टी मनाने वाले लोग बैकपैकर आवास में रहते हैं।
Most of the temporary migrants in the huge 22-23 intake were students and working holiday makers. Many students live in dedicated student accommodation. And on the other hand, working holiday makers live in backpacker accommodation, and lots of them are off in the bush at some point in time working in agriculture.
Professor McDonald का कहना है कि आवास को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। अब प्रवासन यानी माइग्रेशन को बंद करने से ये खत्म नहीं होने वाला है।
It is a crisis and it needs to be addressed, but by just saying that it's due to immigration, drop immigration and it's all going to go away, well, it's not all going to go away.
तो इसे दूर कैसे किया जा सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में अर्बन प्लानिंग में एसोसिएट प्रोफेसर डूरिना पोजानी का कहना है कि हमें और अधिक घर बनाने की आवश्यकता है।
Simply don't have enough houses for the population we have, and that's not simply attributable to migration. It's just we're not creating enough housing.
हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय किराए की रिक्ति दर बहुत कम है। ये प्रॉप ट्रैक में 1.42% पर है, जो अंततः कीमतों को बढ़ाती है। और एसोसिएट प्रोफेसर पोजानी के अनुसार ये बहुत समय से चल रहा है।
Around year 2000, we stopped producing new housing in line with demand, and prices have been going up ever since.
समाधान स्पष्ट दिखाई देता है। अधिक से अधिक घरों का निर्माण किया जाए, विशेषकर किफायती घरों का।
That means councils building their own housing or state governments building housing the way they used to in the past. But then it's also a question of working with private developers and asking them to allocate a portion of the housing they built, allocate it to lower income people.
लेकिन इन सब में समय लगता है, तो अब क्या राहत मिल सकती है? सुश्री डूरिना का कहना है कि आसान तरीका है कि हम किराए की अधिकतम सीमा तय कर सकते हैं।
So people are always talking about, oh, rents are unaffordable, and that's because we have too many migrants. And my response there is, no, rents are unaffordable because we don't regulate them. We could simply put a ceiling to the rents and then they'd be affordable. That it would be as simple as that.
इसलिए हमारे आवास संकट के लिए प्रवासियों को दोषी ठहराना ये इसके अंतर्निहित कारण नहीं बनते हैं और ना ही समाधान है और ये समुदाय के लिए हानिकारक भी हो सकता है.
I think what we're seeing is a lot of short-term politicking, dare I say, dog whistling, which I don't think is very helpful at all.
अबुल रिज़वी इमिग्रेशन विभाग के पूर्व उप सचिव हैं. उनका कहना है कि इस गलतफहमी के वास्तविक परिणाम हैं.
Certainly affecting, I think, the Australian community's understanding of immigration. It certainly affects the Australian community's support for immigration, which over the long term is very, very important.
ओलिविया डोरियो द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता परार ने.